उपनिषदों का सिद्धांत है कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और गुरु की कृपा होती है वृत्ति निर्मल करने से। वृत्ति निर्मल नहीं होगी तब तक गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। और गुरु के सिद्धांतों में अपनी वृत्ति को लगा भी नहीं सकते हैं। तो श्रीमद्भागवत का ये श्लोक वृत्ति निर्मलता का संकेत करता है। जैसे खेत भी हो, बीज भी हो और पानी भी हो, लेकिन कुशल खेडूत नहीं है तो बीज का फल पूरा नहीं मिलता। ऐसे ही जीव भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन जीव ब्रह्म की एकता कराने वाले सद्गुरुओं की कृपा का हम ठीक नहीं बचा पाते तो जीवन भर मनमाने साधन करने से मनमाने आविष्कार करने से भी कोई खास लाभ नहीं होता है। मनमाने आविष्कार तो लाखों लोग कर रहे हैं, कई आविष्कार हुए तो भी जगत का क्या हुआ। जितने विज्ञानी बने उतने अगर ब्रह्मवेता होते तो आज दुनिया कहाँ हो जाती। जितने विज्ञानी बने हैं मनमाने आविष्कार किए जगत की चीज़ों के, उतने अगर ब्रह्मवेता होते तो वैसे ही सहज में सुख और शांति मिल जाता दुनिया को। ऐसे ब्रह्मवेताओं के कई लक्षण होते हैं, सुहृदता, समता, लेकिन मुख्य लक्षण उन महापुरुषों का होता है शांति। सच्चे शिष्य के हृदय में शांति उनके दर्शन से, उनके सानिध्य मात्र से उनको, शिष्यों को, साधकों को शांति का एहसास होने लगता है। ये ब्रह्मवेताओं के लक्षण हैं। जैसे दिया भवानल में मिलकर एक हो जाता है, बूंद सागर में मिलकर एक हो जाती है, घटाकाश महाकाश में मिलकर एक हो जाता है, अथवा घी की पुतली घी है, शक्कर की गुड़िया शक्कर ही है, ऐसे ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है। जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसका तन भी चिन्मय वपु कहा जाता है। उसको चरण, उसकी चरण रज भी हम लोगों का कल्याण करने लगती है। जब ब्रह्मवेताओं की चरण रज भी मनोकामना पूरी करती है, कल्याण करती है, तो ब्रह्मवेता स्वयं जिसका कल्याण करना चाहे उसको तो फिर संदेह क्या है। ब्रह्मवेता की चरण रज से अगर मनोकामनाएं पूरी होती है श्रद्धालु की, तो ब्रह्मवेता स्वयं जो चीज देना चाहते हैं वो कितनी महान होगी। उपनिषद कहती है कि ब्रह्मवेत्ता गुरुओं की कृपा के बिना ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, और जब तक ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये जीव कितना भी कुछ कर लेता है लेकिन मृत्यु का झटका लगते ही अनाथ हो जाता है। कई कर्तव्य निभा ले लेकिन उसका कर्तृत्व ब्रह्म में लीन नहीं होता। फिर भागवतकार ने आगे के श्लोक में बताया, गुरु के लक्षण तो ये लगभग पूरा वर्णन तो शास्त्र नहीं कर सकते, संकेत मात्र ब्रह्मवेताओं के लक्षण बताए इसी एकनाथ भागवत। शिष्य के लक्षण शांत हो, दांत हो, तितिक्षावान हो, जैसे चूहा बिल्ली से भागता है ऐसे शिष्य मान बड़ाई से दूर रहे। मान बड़ाई से देह अध्यास बनता है और देह अध्यास अहंकार को जन्म देकर आत्मा से विमुख कर देता है। शिष्य सतशिष्य वही है जो मान बड़ाई से दूर रहे, जिसको मान की पुड़िया जहर जैसी लगे। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। जो मान की इच्छा रखता है वो भी संसार में दुख उठाता है, क्योंकि मान मिलेगा तो किसी शरीर को नाम को मिलेगा, तो शरीर नाम के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो अति दुख पाएगा। गर्भों का दुख है, अपमान का दुख है। तो जिस को मान की इच्छा है वो थोड़ा सा अपमान भी तो नहीं सह सकेगा। तो शिष्य आध्यात्मिक मार्ग का श्रेष्ठ पथिक मान से दूर भागता है। अहंकार बड़े ऐसे वातावरण से दूर भागता है, लेकिन अहंकार विसर्जित हो ऐसे गुरुओं के द्वार पर उसकी स्वाभाविक रुचि होने लगती है। तो आधी अविद्या ऐसे गुरुओं के सानिध्य से और गुरुओं के द्वार पर आने जाने से ही दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ छोटे से छोटे व्यक्तियों से और बड़े से बड़े व्यक्तियों के साथ, तो छोटे बड़े का भेद मिटने की जगह हो जाती है। तो जो मान्यता होती है, अहंकार बनता है धन से, सत्ता से, बुद्धिमत्ता से, सौंदर्य से, तो ये नाशवान चीज है। तो उस नाशवान चीजों से जो अहंकार रिकवर होता है, तो चीजें तो नाशवान होती है, लेकिन ये अहंकार जो रिकवर होता है वो हमें अविनाशी परमात्मा से दूर कर देता है। और अहंकार इन नाशवान चीजों का है, नाशवान चीजों का अहंकार छोड़ने से अविनाशी की मुलाकात हो जाती है। तो शिष्य के लक्षण हैं, जो शांति प्रिय हो, जो सत्य प्रिय हो, सत्य बोलने में जिसकी रुचि हो, शांति जिसे रुचती हो, तितिक्षा जो सहन करता हो, और मान बड़ाई से दूर भागता हो, संसार के भोगों से जिसको मन समझ गया हो कि कहीं नहीं, वो है शिष्य। मंत्र दीक्षा ले ली, शिष्य हो गया है तो ठीक है, लेकिन शिष्य तब है जब गुरु के सिद्धांतों से संलग्न होता है। जितने अंश में हम लोग गुरुओं के सिद्धांत से जुड़े हैं उतना ही हमारा शिष्यत्व है। गुरु के द्वार पे आकर फिर दूसरों का उपयोग कर लेवे तो गुरुद्रोही हुआ। तो शिष्य जो है वो तो कीर्ति से, भोगों से, कपट से दूर भागता है। जो भोग से कपट से दूर भागे वो है शिष्य। और जो गुरु की कृपा की चादर ओढ़ के भोग, कपट, चोरी, जारी, हिंसा ये आदि सब करने लग जाए वो तो असुर है। जैसे असुर लोग देवताओं के झुंड में घुस के अपना काम कर लेते हैं, तो एकनाथ महाराज ने शिष्य के लक्षणों का वर्णन किया और ब्रह्मवेता महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया। ब्रह्मवेता के लक्षण नहीं, ब्रह्मवेता महापुरुषों का स्वभाव। तो शांति, उनके सानिध्य में शांति हमें मिलने लग जाए, उनकी मुख्य पहचान। प्रारब्ध वेग से ब्रह्मवेताओं का आचरण तो अलग अलग होता है, कोई राज्य करते, कोई समाधि करते, कोई उपदेश देते, कोई पागलों का रूप बना के बैठे होते हैं ब्रह्मवेता। अब घाट वाला का जीवन अपने ढंग का है, मस्तराम का अपने ढंग का, गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का अपने ढंग का था, और उधर हैं भावनगर के जो मस्तराम बैठे हैं उनका अपने ढंग का, नहाना धोना कुछ नहीं, वहीं लेट्रिन, वहीं बाथरूम, उन्हीं कपड़ों में। लेकिन तो उनके लक्षण बाह्य लक्षण तो नहीं है, मुख्य लक्षण है कि उनके निकट बैठने से शांति आती है, तो ब्रह्मवेत्ता है। और ये बहुत ऊंची चीज है, आत्मिक शांति ये बहुत ऊंची चीज है, भगवान के दर्शन से भी ऊंची चीज। अर्जुन को भगवान के दर्शन हुआ और अंदर शांति नहीं थी, तो भगवान को मेहनत करना पड़ा। भगवान के दर्शन हो जाए लेकिन आत्म शांति नहीं पाया तो फिर भगवान को कष्ट देना पड़ेगा। फिर भगवान आए, उपदेश दें, उसका मनन करके और शांति पाओ, तब भगवान परम तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और साधक भी खुश होता है। तो भगवान आकर उपदेश दें अथवा गुरुओं का सानिध्य लेकर, उपदेश लेकर, उनकी कृपा लेकर शांति लाभ करना चाहिए, हृदय की शांति। सब कुछ करते तो हृदय के सुख के लिए तो करते, और क्या है? वो सुख अपने आप अंदर से मिलने लग जाए। जो भी दुनिया के दौड़ धूप है सुख के लिए करते, आंतरिक सुख के लिए, हृदय शांत होने लगता है। तो जैसे शांति प्रिय है, अमानित्व, अदम्भित्व, आर्जव, क्षमा, शौच, ये शिष्य के लक्षण हैं। हृदय में क्षमा स्वभाव, शौच माना शुद्धि, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, निराभिमानिता, निरअहंकारिता, ये शिष्य के सद्गुण हैं। ये बढ़ते जाएंगे ना तो गुरु की कृपा ज़्यादा पचती जाएगी। जैसे भूमि हो, जमीन है तो पियत के हो, ऐसा हो सेडा न हो, जमीन की सुयोग्यता होती है तो वहाँ ये सब गुल ज़्यादा होता है, वातावरण अनुकूल हो तो। अब गुजरात साइड में ये सब गुल होगा, रतलाम में ये सब गुल करो तो फैल जाता है, उधर नहीं बन सकता, वहाँ वो वेदर नहीं है। रतलाम में अफीम बहुत अच्छा होता है, खसखस बहुत बढ़िया होती है उस इलाके में, रतलाम के इलाके में। तो ऐसे ही जैसे बीज बोने के लिए भूमि और हवामान वातावरण काम करता है, ऐसे ही ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भी वातावरण, संस्कार, इस पर भी आधार होता है। साधक जितना कुशल होगा उतना उसमें ब्रह्म विद्या फलेगी फलेगी। सप्त शिष्य ने मान, यश, वाहवाही, कष्ट रूप लगती, उससे बाहर आ जाए, ऐसा शिष्य की अवस्था हो जाती है। आदर बुद्धि थवाती, सम्मान मळे, ले हाँ सारूँ थे, तो यहाँ देह आत्मबुद्धि थी जाए। देह आत्मबुद्धि थाय तो ये अंदर ना आत्मिक सुख थी बहुत दूर आवी जवाय। सम्मान में आदर बुद्धि होने से देह आत्मबुद्धि हो जाती, देह आत्मबुद्धि होने से जीवत्व मजबूत होने लगता है, शिवत्व में गलने की वजह से शिवत्व से दूर हो जाता है। इसीलिए धर्म की शुरुआत होती है, देवी देवता आप ही बनाओ, सुपारी आप ही बनाओ, गुड़ के गणपति और प्रणाम करो। क्यों? कि देह आत्मबुद्धि कम हो। देह आत्मबुद्धि मान में सतबुद्धि सुख बुद्धि रखने से, मान में नाम में सुख बुद्धि रखने से देहात्म वृत्ति मजबूत होती है। और मान और सुख, मान में और नाम ना में मिथ्या बुद्धि करने से देहात्म अध्यास घटता है, तो सहजता आती है। और सहजता का जो है स्वतंत्र सुख, मान का सुख परतंत्र है, कोई मान देगा तभी सुख। और मान देके ये करते हैं आजकल, ऐसा नहीं कि मान देके भगवान की तरफ ले जाएं, ऐसा कहाँ होता है। मान देकर 5-25 हज़ार पड़ा हुआ है, 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है, आओ भाई सेठ अतिथि विशेष, आओ साहेब आम करो, कहीं सही करवाए करा गई से। तो हकीकत में जो मान देते हैं वो अंदर से आत्मज्ञानी है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। वो हमको यमराज के पास से छुड़ाने में समर्थ हैं कि नहीं, तो हम यमराज के पास से जो छुड़ाने में समर्थ हैं वो मान तब देंगे जब हम ईश्वर के तरफ बढ़ेंगे, देहाध्यास छोड़ने के तरफ बढ़ेंगे, अथवा कोई न कोई हमारे में आध्यात्मिक गुण होगा उसको मान देकर विकसित करेंगे। ऐसा नहीं मान देकर तुम्हारा कुछ लेना चाहते हैं, नहीं नहीं, जो मान देकर तुम्हारा कुछ लेना चाहे वो तो ठग है वो तो ठग है। मान देकर कुछ लेना चाहते हैं तो ठग है, लेकिन मान देकर अथवा डांट के विनोद प्यार कैसे भी करके तुमको कुछ देना चाहते हैं वो ब्रह्मवेत्ता होते हैं। जो तुमको देना चाहें और ऐसा दें कि फिर कहीं लेना न पड़े, ऐसा जो देना चाहे वो ब्रह्मवेत्ता है। और मान आदि देकर या कुछ भी धाक धमकी देकर भी कुछ तुम्हारे से लेना चाहते हो तो ठग है। तो श्री कृष्ण किसी को धाक धमकी देते हैं, राज ले लिया तो ठग हुए कि नहीं? नहीं, राज कहाँ ले लिया, अहंकार ले लिया, उनके कर्म ले लिया, राज खुद किया नहीं। जिसके कहने मात्र से राजाओं ने राज छोड़ दिया, उन्होंने राज किया नहीं। जैसे मछली गढ़ में फंसा कर छटपटाती है, ऐसे ही साधक मान से छटपटाता है, दूर भागता है। मान में यश में सुख बुद्धि होने से अंदर से आदमी पराधीन हो जाता है, इसलिए उसमें सुख बुद्धि नहीं करना चाहिए। ऐसे अंतःकरण शुद्ध होता है और आत्मज्ञान की प्यास बढ़ती है। रामतीर्थ रात को उठ उठ के रोते थे कि 22 साल हो गया, आज का दिन भी वैसे ही गया, अब कब मिलोगे प्रभु, हृदय में हो और अब कब मिलोगे। ऐसी छटपटाट जो है ना जीव को शुद्ध बना देती है। इनकम टैक्स वाले आते जाते हैं तो धनवान अपना धन को सेट कर देता है, इनकम टैक्स के दरोड़े का संकेत होते ही वो पहले से अपने धन को अपने कागजात को सेट कर देता है। ऐसे ही मान यश आने की संभावना होती है, उसके पहले वो सद्गुण का धनवान जो साधक है वो अपने से कार्य को गुणों को छुपा के दूसरों को आगे कर देता है। ये नश्वर धन छुपाने के लिए आइडिया कितनी लगानी पड़ती है, तो वो तो आध्यात्मिकता पुण्यों का धन है। अपमान होने से पाप खत्म होते हैं और मान होने से पुण्य खर्चा जाते हैं। यश मान होने से पुण्य खर्चता है और अपमान होने से पाप खर्चा में आ जाता है। आप कुदरत यशमान होता हो अलग बात है, अपने को थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से यशमान की इच्छा करे तो अपना पुण्य खर्च होता है। पुण्यों का फल है ना मान यश प्रतिष्ठा। और तो ऐसे ही रघुकुल के राजा को बोला कि ऐसा बिस्तरा लगाओ जाके भाभी के द्वार पर, शाम को 6 बजे बिस्तरा लगा के सो जा। वशिष्ठ ने बताया रघुकुल का सम्राट और विधवा भाभी के द्वार पर, महल के द्वार पर बिस्तरा लगा के सो जाना 6 बजे। लोगों ने तो कुछ का कुछ कहा, अफवाह हो गई, लेकिन उनका कोड उतरता गया। 7वें दिन सब दूर हो गया, बाकी जरा सा फोड़ी गई। तो गुरु महाराज जरा सा फोड़ी रहे हैं, बोले वो मेरे हिस्से का है, मैं निंदा करूँ तो भी उतर जाएगी, लेकिन तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी की निंदा करके मैं क्यों पाप का भागी हूँ। तो ये तुम्हारे अफवाह और निंदा हुई, उन्होंने तुम्हारा पाप धो डाला। ये बताया था ना कथा रघुकुंड के, आप लोगों को बताया था। मान पुड़ी है जहर की, मान की जगह से दूर भागना चाहिए साधक को। मूठ जो है संसारी पामर मन होता है वो मान की जगह पे भागेगा, और साधक मान की जगह से दूर भागेगा, और ज्ञानी मान अपमान दोनों को पार करता जाएगा। मृत्यु कितना बड़ा खतरनाक अपना अपमान है, जमरा के प्राण निकाले, शमशान में ले जाए, लक्कर ऊपर डाल दे, ये कितना अपमान है। ये मृवाविन प्राण काटे, शमशान में ले जाए, अपना ऊपर लाकड़ा मूके हड़गावे, ये कितलू मोटू अपमान है। हजार हजार मान मर्या हो पण छेवटे पेलू अपमान मोटू तो माथे छे, ये जो याद रहे ने तो मान बान नी छाम पूछड़ी दबाई ने बाकी जाए। मान कोने आलस दे लोको, तो एनो घोर अपमान थवानू छे कि नहीं? घोर अपमान थवानू छे। तो जे मान मा प्रीति अंदर थी होए तो अपमान नु दुख नहीं पचावी शके। એટલે રાજા મહારાજાઓ શું કરતા હતા, ગુરુના શરણે જતા તો ગુરુ કે જાઓ બેટા ભિક્ષા કરકે આવો. એવું નથી કે ગુરુ એમનું માન જોઈને ગુરુને કંઈ દુઃખ થતું હશે, નહીં નહીં. શિષ્ય કો એસા માન મળે કે અગર જાય તો બ્રહ્મદેવ અપની ગાદી સે ઉતર કે ઉસકા વેલકમ કરે. શિષ્ય અપના દેહ ધ્યાસ છોડતા હૈ તો ઉસકા દેહ તો લીનો જાયેગા, ફિર અગર ઉપર કે લોકો મેં ભી જાતા હૈ તો ઇન્દ્ર ઉસકા પૂજન કરતે હૈ, એસા બનાના ચાહતે હૈ, ઉસી લી લૌકિક માન કે છે. શુક્ર કા પૂજન ક્યાં ને ઇન્દ્ર ને, ગુરુ ને ક્યાં કરા, ઝાડું લગવાયા. તો બ્રહ્મવેતાઓ કા શિષ્ય, જો બ્રહ્મવેતા મૂળ મહાપુરુષ હોતે હૈ, ઉનકે વહાં કોઈ શિષ્ય હો ગયા ફિર વો કિસી કા ગુલામ નહીં હોતા. જ્ઞાની કા શિષ્ય કહીં ભી ગુલામ નહીં હો સકતા. અરે એ લડકિયાં આતી વો ભી શેર જૈસી હૈ, રાસ્તે મેં કઈ મિલિટરી કઈ કોઈ કી તાકાત નહીં, સિંહણો થઈ જાય, અનુભવશે ને તમને. એસા હોતા બ્રહ્મવેતા કા ઘડતર એસા હોતા કે ફિર બ્રહ્મ કે સિવાય કહીં ઝુકેગા નહીં. અભી કહીં ઝુકના હૈ તો ઉસને અભી ગુરુ કો ઠીક સે જાના નહીં. કિસી સે પ્રેમ સે વ્યવહાર કરે, નમ્રતા સે કરે વો અલગ બાત હૈ, અંદર સે કિસી સે પ્રભાવિત હો જાય એસા તો બ્રહ્મવેતા કા શિષ્ય નહીં હોતા. દૂસરે કિસી સે પ્રભાવિત હો જાય એસા બ્રહ્મવેતા કા શિષ્ય નહીં હો. અગર બ્રહ્મવેત કઈ કિસી સે પ્રભાવિત હો ગયા તો બ્રહ્મવેતા કા શિષ્ય નહીં હૈ વો. બ્રહ્મવેતા કા શિષ્ય કિસી સે ઇમ્પ્રેસ નહીં હોતા. જો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કા સેક્રેટરી હૈ વો પટાવાલા સે યા કલેક્ટર સે ઇમ્પ્રેસ હોગા ક્યા? અગર ઇમ્પ્રેસ હો રહા હૈ તો વો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કા સેક્રેટરી પદ નહીં સંભાળ સકા. સીધી બાત, સીધો આમ દ્રષ્ટાંત. એસા હોતા હૈ મન કી ઈચ્છા કરેગા ઉસકા દેહ ધ્યાસ બઢેગા, વો અપમાન નહીં સહ સકેગા, ઉસકો ધન કા લોભ રહેગા, વિષયો મેં રુચિ રહેગી, પ્રીતિ રહેગી, ઔર પરાધીનતા રહેગી અંદર સે, ઔર પરાધીન સ્વપ્ને સુખ નહી. ઇસીલિયે આઈડિયા સે આદમી સમજતે 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 ઉપર ઉઠ જાતા. અમાનિત્વ શિષ્ય કા લક્ષણ હૈ. દૂસરા મત્સર રહિત હોના, જ્ઞાન કા ભી મત્સર હોતા હૈ, જ્ઞાન કે મત્સર સે ભી બડે બડે ઝઘડે હોતે. અર વો મત્સર તો મહારાજ ભલ ભલો કો લગ જાતા હૈ, કોઈ ભી અકલ હોશિયારી આવડત એનું મત્સર હોય છે અંદરથી, કે આપણે ખસ્યા તો બીજા શું કરી શકતા હતા. એ જો મત્સર હૈ વો ભી બડો બડો કો પટકતા, વિશ્વામિત્ર જૈસે કો પટક દયા મત્સર ને, મેરી તપસ્યા એસી, મેરા જ્ઞાન એસા. ઉસલી દૂસરી સૃષ્ટિ કરકે દિખાયા ઓર તપનાશ કર દિયા. જો યોગી હોતે ને, અગર આત્મજ્ઞાની ગુરુ કા ઘડતર નહીં ઓર યોગી હો ગયા તો યોગ કી શક્તિ આ જાયેગી, તો કભી ને કભી થોડા અપમાન હો જાયેગા માન મત્સર, તો અપના તપ ખર્ચ કરકે આપણે કોઈને બતાવી દઈએ. કોઈને બતાવી દીધું, પાંચ માણસ તાળી પાડી, પણ પંદર વર્ષ તારા પૂરા થઈ ગયા, ડપો બુદ્ધુ લો. તો એ મત્સર ભી તપનાશ કર દેતા, પુણ્યશીન કર દેતા. એસે શિષ્ય બચતા હૈ. બસ ગુરુ કૈસે સંતુષ્ટ હો, તો હમ માન મત્સર ચાહેંગે તો ગુરુ સંતુષ્ટ નહીં રહેંગે. હમ અહંકારી બનેંગે તો ગુરુ સંતુષ્ટ નહીં રહેંગે. હમ નિરહંકારી હોંગે, માન મત્સર રહિત હોંગે તો ગુરુ રાજી હોંગે. બસ મૂળ મંત્ર કે ગુરુ રાજી કૈસે હો, પહેલા મંત્ર કે બ્રહ્મવેતા ગુરુ કૈસે મિલે. જિસકે હૃદય મેં છટપટાટ હૈ બ્રહ્મવેતા ગુરુ મિલને કી, ઉસી કો મિલતે હૈ. છટપટાટ નહીં તો ઉસકો મિલે હુએ ભી વો વહાં ટકેગા નહીં, તો બ્રહ્મવેતા ગુરુ કૈસે મિલે, અ ફિર વો બ્રહ્મવેતા ગુરુ રાજી કૈસે હોવે. એ દો મંત્ર જીવન મેં આ જાય તો બાકી કે સદગુણ અપને આપ આને લગે. બ્રહ્મવેતા ગુરુ કૈસે મિલે, ઓર વો રાજી કૈસે હો, હમ પર સંતુષ્ટ કૈસે રહે. जैसे माँ स्वाभाविक बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन कभी कभी बच्चे की ऐसी अंगड़ाई आती है तो माँ के वक्षस्थल से दूध उभर आता है। ऐसे ही हम लोगों का ऐसा व्यवहार हो कि हमको देखते देखते गुरु के हृदय से हमारे कल्याण का भाव उभर उभर कर निकले, वो लाभ करता जाता है, हमारा कल्याण करता जाता है। क्योंकि वो महापुरुष सत्य संकल्प होते हैं, अपने लिए तो उनका संकल्प उठता नहीं, जल्दी से उनके चित्त में संकल्प होता नहीं, और फिर जब हो तो हमारे कल्याण का होता जाए, उससे बहुत लाभ होता है। नहीं तो ये जीव बेचारा करोड़ों जन्म के माता पिताओं का लेना देना, करोड़ों बंधन एक ही जन्म में साक्षात्कार कर ले, ये गुरुओं के सत्य संकल्पों का ही तो प्रभाव है। आप मत्सर मना मान मत्सर ईर्षा दूसरों की वो करते हैं, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए भी अपना समय शक्ति गंवाते हैं, झगड़ते लड़ते, ये मत्सर है। धड़ाधड़ी धड़ाधड़ी भूमाभूमि, ये मत्सर का दोष होता है ना अंदर में, तब ऐसा आ जाता भड़का भूमा पौड़ी पाड़ी में व्यवहार करवाना, ये मत्सर का दोष होता है उसी लिए, नहीं तो सौम्यता होना चाहिए। मत्सर कम हो जाएगा तो सौम्यता आ जाएगा, सौम्यता बढ़ता है तो समझो साधना बढ़ रही है, और मत्सर मान और मत्सर बढ़ रहा है तो समझ लो कोई दूसरी दिशा में गाड़ी जा रही है। जो दुर्जन है अहंकारी है उसको निंदा का बाण लगता है, शिष्य तो जहाँ निंदा होती वहीं जाता है, भीख मांगने जा रहा है अपमान की जगह। अब जो अपमान को चाहता है या अपमान की जगह पर जानबूझ के जाता है उसको अपमान के असर भी तो नहीं होते, और जो मान चाहता और मान नहीं मिले तो कितना दुख हो। कोई फंक्शन में बोलाया अतिथि विशेष करेंगे, अने एना माते कोई व्यक्ति त्या गया अतिथि विशेष, पर ए लोग शू करूँ, ए लोग जो कि हमने जो अतिथि विशेष करीशू तो पचीए जा रहा है, पर आ साहेब ने करीशू तो हमने जमीन ग्रांट करी आप, तो भले साहेब पहला व्यक्ति करता ना ना था पर हमने अतिथि विशेष कर। हवे तो जे माणस अतिथि विशेष थवा गया हो एनू पद ए लोग कैंसल कर दीद बीजा ने बिहाड़ी दीदा हो पेला ने कितलू दुख थाय, तो पराधीन थयो ने अतिथि विशेष शू है, बे शब्दों छे के बीजू कहीं छे ना, कि ऊंची गादी बेहवा है तो तमे घरे बे पाटला मूकीने बेहो तो शू होत ऊंची बेहवा है पाट पर पाट चार पाट मूको ना के લોકોની હોય છે તો લોકોએ દીધેલી વસ્તુ થઈ ને, તો જે સેંકડો આદમી કે કૃપા સે જો સુખ મિલાક્ષણ ભર, તો સેંકડો કી ગુલામી હોય કે બધા તાળીઓ પાડે બધાને સારું લાગે એવું બોલવું જ પડે, કે ભલે આપણને અંદરથી આમ લાગતું હોય તેમ લાગતું હોય છતાંય અતિથિ વિશેષ થયા, જરા તાળીઓ પડાવવાનું સુખ લેવું છે તો કેટલું જૂઠ કેટલું પોલ્યુશન એ બોલવું પડે અતિથિ વિશેષને, બારીક સે દેખો તો સરાસર બેવકૂફી હે। शिष्य का स्वतंत्र सुख होता है, और मान चाहने वाले का तो हजारों हजारों की पराधीनता का सुख होता है, और पराधीनता का वो कोई सुख होता है, मिच्छो पेड़ता हो अंदर दबकारा पड़ता हो, हास्य ना आवे तो केम छो भाई, आ भाई फलाना आ भाई फलाना आ भाई फलाना, एक दूसरा का क्या क्या करना पड़ता है। और फिर भी अंदर की मस्ती कहाँ होती है उनमें, गुरु की प्रसन्नता और अपना कार्य कैसे सिद्ध हो, अपना कार्य के आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान पाने में क्या जो भी करना चाहे वो कर लेता है। जैसे व्यापारी दक्ष रहता है, ग्राहक को वो वैरायटी दिखेगा वो दिखेगा, कैसे भी ग्राहक माल ले जाए दो पैसे मिल जाए उसमें वो दक्ष होता है, ऐसे ही शिष्य का तीसरा गुण है दक्षता, कि कैसे भी करके इसी जन्म में आत्मज्ञान हो जाए, समय व्यर्थ न जाए, ये पुत्र और नूह और पत्नी और समाज की थोड़ी छोटी मोटी वाहवा ये तो इधर ही पड़ी रहेगी, मिटन माइटन खड़ी मान दिनों पर नेठ तो बहना है ना, जो अपमान थी लो इन्हें मथा काठियों चढ़नी बाह बाहियाँ साड़ी ना है ना के शरीर के, तो शरीर को जलाएंगे ये बड़ा अपमान है, अकेला शमशान में छोड़ कर कुटुंबी चले आएंगे, फिर जीवन भर इसका मान हुआ तो क्या हुआ, तो ये अपमान, मृत्यु का अपमान हो जाए उसके पहले मृत्यु के पार जगह पे पहुंच जाए, इसमें वो शिष्य दक्ष रहता है, कुशल। उसी में उसने अगर बुद्धि का उपयोग किया तो ठीक शिष्य है और ठीक मनुष्य जन्म का उसने फायदा उठाया। नहीं तो बुद्धू है, बुद्धू कमा कमा के रुपए पैसे क्या क्या बिगड़ बिगड़ करके छोरे छोरियों को बहुओं को देके और आप जमदूतों के गुलाम हो गया, तो मूर्ख है। शिष्य में तो ये होता है, अमानित्व, अदाम्बित्व, अमात्सर्य, दक्षता, ये गुण होते हैं। तो वहाँ ज्ञान टिकता है, गुरु की कृपा ठीक से खिंच के आ जाती है। पोतानों कार्य आत्मलाभ, आत्मलाभ में आत्मलाभ प्राप्त करवामा आलस नहीं, विलंब नहीं, विलंब सहन करी शके नहीं, आलस राखे नहीं, एवो जे शिष्य से दक्ष कहवाये छे। दक्षता, कुशलता, आलस, आत्मलाभ होने में आत्मलाभ करवामा आलस थाय तो ये दक्ष नथी, बुद्धू छे। शिष्य तो छे पण बुद्धू छे, विनम्र तो छे पण बुद्धू छे।